नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। असम, केरलम और पुदुच्चेरी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन पत्र 23 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं और इनकी जांच 24 मार्च को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। सख्त निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग अनिवार्य होगी। राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार निगरानी और अवलोकन के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार 55 विधानसभा क्षेत्रों को पहले ही संवेदनशील घोषित किया जा चुका है। लोकसभा में आज रेल मंत्रालय की 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान होगा। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कल कांग्रेस के तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि यात्री सुरक्षा के नाम पर केवल घोषणाएं की जा रही हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि इस दौरान नई तकनीकों को अपनाया गया है और रेलवे नेटवर्क का विस्तार भी हुआ है। वहीं राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन विनियोग विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए पेश कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए निर्वाचित घोषित हुए हैं। 2 सीटों के लिए कल मतदान हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा ने कल रात ध्वनिमत से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इसमें जबरन धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कल कतर एयरवेज की उड़ानों से लगभग 1100 भारतीय यात्री नई दिल्ली, मुंबई, कोची और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना हुए। साथ ही जानकारी दी कि इन गंतव्यों के लिए आज भी उड़ानें संचालित होंगी। दूतावास ने यह भी बताया कि कतर एयरवेज कल से अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोझिकोड और मुंबई के लिए उड़ानें संचालित करेगा। साथ ही बताया कि कतर में अल्पकालिक यात्रा पर फंसे भारतीय नागरिक यदि सऊदी अरब के रास्ते भारत की यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए सऊदी अरब के अस्थायी ट्रांजिट वीजा की सुविधा जारी रहेगी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारतीय पोत शिवालिक कल 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने 2 अन्य पोतों की स्थिति की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक अन्य पोत नंदा देवी भी आज भारत पहुंच रहा है। वहीं तीसरा पोत जग लाडकी संयुक्त अरब अमीरात से रवाना होकर 81,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ स्वदेश आ रहा है। ईरान के भारतीय ध्वज वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के बदले फरवरी में जब्त किए गए 3 टैंकरों को छोड़ने का अनुरोध वाली मीडिया रिपोर्ट को सरकारी सूत्रों ने निराधार कहा है। सूत्रों के अनुसार भारत और ईरान के अधिकारियों के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल, स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार, ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बैरनसेन से मुलाकात की। बैठकों में एशिया में जारी संघर्ष पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ है। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान आज विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का आयोजन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और कई अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।